Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Kesari Sambhoga. तो उस प्राण में ही ये ऐसी आकृति बन जाती है अभिनिवेश, चूंकि इसमें अभिनिवेश है इसलिए प्राणमय में भी वही अभिनिवेश हो जाता है कि मैं यही हूं। आपने भागवत में सुना होगा ना, नरकों का जहां वर्णन है, बोले तुमने व्यभिचार किया तब नरक में जाओगे, तो लोहे की स्त्री से, तप्त लोहे की स्त्री से तुमको जो है आलिंगन कराया जाएगा। तो भाई वहां लोहे की स्त्री और जो आलिंगन करने वाला है वो कौन है? बोले चूंकि पहले अपने को वो पुरुष शरीर मानता था इसलिए मरने के बाद भी अपने को पुरुष शरीर ही मानता है। वो जो स्त्री शरीर अपने को मानता है वो मरने के बाद भी स्त्री शरीर ही मानेगा। अच्छा, स्वप्न जो आता है तो आप अपना घूमते हुए स्वप्न में मालूम पड़ते हो, तो आप पुरुष हो तो पुरुष रूप में मालूम पड़ते हो, स्त्री हो तो स्त्री रूप में मालूम पड़ते हो। वो प्रोजेक्शन कैसे हो जाता है? तो इसी अभिनिवेश, स्थूल अभिनिवेश से ही वो सूक्ष्म अभिनिवेश रहता है। तो तस सेवा एष पुरुष विधा एवो, वो जैसा स्थूल में अन्नमय कोष था उसी आकृति का ये प्राणमय कोष भी रहता है। वो ईसा मसीह को जब फांसी दे दी गई तो खून से लथपथ हो गए, तो उनको जो शाल कहते हैं कि उस पर से वो उतर आए, जो उनके संप्रदाय वाले हैं वो ऐसा बताते हैं कि वो मरे नहीं, वो उस पर से उतर आए या उतार लिए गए और उनको शाल में लपेट दिया क्योंकि नंगे थे उस समय। उस शाल के ऊपर उनके खून की से छाप पड़ गई। वो शाल जो है ऐसा बोलते हैं वो लोग कि अभी सुरक्षित है। एक वो पिक्चर आई थी द रोब, तो उसमें ये बात दिखलाई गई थी। तो जैसे ऐसे मतलब थे ना, तो ऐसे ही उसमें आकृति शाल के ऊपर उसकी बनी हुई है। तो जैसे छाप पड़ जाती है कपड़े के ऊपर, ऐसे ही छाप पड़ जाती है प्राण में, ऐसे ही छाप पड़ जाती है मन में, ऐसे ही छाप पड़ जाती है अपने ज्ञान में, संस्कार में, और ये जन्म जन्मांतर तक पीछा करती है। महाराज श्री ऐसे कहते थे कि जब तुम ऐसा बोलते हो ना कि किसी को दुख लगा है तो उस समय तुम बिच्छू हो, जैसे बिच्छू डंक मारता है, ऐसे शब्द बोलते हैं कि दूसरा तिल मिला जाए। तो बोले बिच्छू का संस्कार कहां से आ गया तुम्हें? जीवन में तो बिच्छू काटा नहीं है किसी को। बोले बिच्छू रहे तो हो ना पहले, तो किसी जन्म में बिच्छू रहे थे वो संस्कार उदय हो गया, इसलिए अब तुम जो है बिच्छू की तरह से बोल रहे हो, काट रहे हो उसको। केकई के प्रसंग में लिखते हैं कि केकई जो है वो ऐसे उसकी सांस चल रही थी जैसे सर्पणी फुफकार रही हो। अब आप उत्प्रेक्षा अलंकार कहके छोड़ दो उसे, वो बात अलग है, लेकिन एक मनोस्थिति में हम सांप भी हो जाते हैं। क्रोधी जानवर में इसकी गिनती होती है सर्प की। एक दफे बोले महाराज जी कि जब क्रोध आवे तो अपना शीशे में अपना मुंह देखना चाहिए। तो बोले क्या होगा, तो बोले गधे जैसा मालूम पड़े। मगर अपना ही मुंह देखना, दूसरे को शीशा दिखाना मत। अगर दूसरा गुस्सा हो तो उसके सामने शीशा कर दो कि देखो तुम्हारा गधे का मुंह हो गया है, तो उसके लिए नहीं है, नहीं तो वो तो और क्रोधित होगा। जब तुम्हें क्रोध आवे तो शीशे में अपना मुंह देखना, गधे जैसा मुंह लटका हुआ होगा। अरे शेर जैसी उस समय आंखें हो जाती हैं लाल लाल, नारायण, सांस जोर जोर से चलने लगती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये सब ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं शरीर में हो जाती हैं। तो जैसे शरीर में होती रहती हैं ऐसे ही मन में भी होती रहती हैं। जैसा जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसी वैसी प्रतिक्रियाएं सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में चलती चली जाती हैं। अच्छा, हमको एक सपना आया, बड़ा अच्छा सपना था। अब यदि हम उसकी स्मृति करें तो अभी भी याद आ सकती है उसकी। इसका मतलब है कि स्मृति जो है वो मिथ्या की, सॉरी सच्ची चीज की हो ऐसा नहीं है, मिथ्या की भी स्मृति होती है। और सच्ची चीज का भी संस्कार जैसे बनता है ऐसे ही मिथ्या चीज का भी संस्कार बनता है। तो ये जब मनुष्य इस शरीर को छोड़कर जाता है तो ये संस्कारों की पोटली इसके साथ सिर पर सवार रहती है। इसमें कुछ सच्चे संस्कार हैं सच्चे के आधार पर, कुछ झूठे के आधार पर हैं, कुछ कल्पना के आधार पर हैं, जिनको न मिथ्या कह सकते हैं न सच्चा कह सकते हैं। और वो सत्यवत बुद्धि ने मान लिया है उनको, और ऐसा ही है बस, उसी से हमारे पुनर्जन्म की ये बातें आगे चलती हैं। भगवान ने तो गीता में कहा कि अंत में जैसी तुम्हारी मति होगी सोई तुम्हारी गति होगी, लेकिन अंत का मतलब ये नहीं है कि एंड मरते टाइम पर, उसके अनुसार तो होगी ही। जिस संकल्प का विकल्प नहीं होता है वो संकल्प सच्चा हो जाता है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बताया महाराज सिंह ने। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में आया कि हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, संकल्प किया ब्रह्म ज्ञान प्राप्त। फिर दूसरी बार मन में आया कि प्राप्त हो ये तो ठीक है, लेकिन हम में तो इतने विकार हैं, हमारी बुद्धि तो ऐसी नहीं है, हमारा वैराग्य तो ऐसा नहीं है, पता नहीं प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अब वो जो तुम्हारा संकल्प था ना उसका विकल्प हो गया, अब प्राप्त नहीं होगा। तो बोले कैसे होगा कि ऐसे ही संकल्प विकल्प करते करते जब जिस संकल्प का विकल्प नहीं हो तो वो सत्य हो जाता है। तो मरते समय यह होता है कि जो बात आखिर में आपके दिमाग में होती है उसके बाद मर गए तो विकल्प की गुंजाइश ही नहीं रही, तो बस वैसा ही सत्य हो जाता। इसलिए भैया मरते समय की, मरना सबको ही है, मरते समय के लिए ये बात तैयार रखनी चाहिए कि एक तो आसपास कोई रोवे नहीं। सब घर वालों से कह दो कोई रोवे रावे नहीं, और भगवान की सत्संग की चर्चाएं हो। अब महाराज श्री तो सुबह से शाम तक कुछ न कुछ, कभी रामायण सुनते थे, कभी भागवत सुनते थे, कभी भजन सुनते थे, कभी कीर्तन सुनते थे, मतलब वो पूरा समय जो है, मृत्यु का क्या पता है कि कब आ जाएगी। जब ये मालूम पड़ गया कि अब ये शरीर नहीं रहेगा तो पूरे समय को उसी में बिताना चाहिए। बोले वो तो तत्वज्ञानी थे, चाहे जैसे मर जाए, बोले वो महिमा है तत्वज्ञान की, चाहे जैसे भी मर जाए तो भी उनकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो महात्मा है एक होता है तत्वज्ञानी और एक होता है महात्मा। तो आप तत्वज्ञानी भी हो और मान लो महात्मा भी हो, तो महात्मा माने तत्वज्ञान के अनुरूप रहनी जिसकी हो उसको महात्मा बोलते हैं। अब महात्मा हो गए तो क्या हम रुपए पैसे की और चोरी चमारी की इनकी चर्चा करें? सत्य वस्तु की ही चर्चा करेंगे, वो ही सुनेंगे। तो महात्मा की शोभा यही है कि जो अच्छे वातावरण में शरीर छोड़े, और तत्वज्ञानी की ये महिमा है कि वो कहीं भी प्राण छोड़ दे, कैसे भी प्राण छोड़ दे, छोड़ के आधे छूट ही जाता है अपने आप जहां छूटना होता है, तो उसकी मोक्ष हो जाएगी। ये उसकी महिमा है, ये आदेश नहीं है कि ऐसा छोड़ो। लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। रहनी जो है वो अपनी भगवानमय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो स एव पुरुष विधा एव, ये जो प्राणमय कोश है इसकी आकृति कैसी है कि जैसी अन्नमय कोश की है ऐसी है। कोई अपने को पुरुष मानता है तो प्राणमय कोश भी पुरुष रूप है, कोई स्त्री मानता है तो स्त्री रूप भी वही है। उदाहरण देते हैं इसमें कि जैसे सांचा होता है, तो सांचा मान लो गोल है, अब उसमें आपने तांबा भर दिया या कोई धातु भर दी, तो जैसा सांचा है वैसे ही उसका तांबे की भी आकृति बन जाती है। तो ये जो स्थूल शरीर है ये तो सांचा है, अब इसके भीतर प्राण भरा हुआ है, इसी के भीतर मन भरा हुआ है, बुद्धि भरी हुई है, तो ये जैसा सांचा बाहर का है वैसा ही ये अपने को मानने लगता है। ये आत्मा जो है कल्प वृक्ष भी तो है ना, तो कल्प वृक्ष का उदाहरण तो आपने सुना ही है। कल्प वृक्ष कहते हैं कि जिसके नीचे बैठकर जो संकल्प करो सो ही पूरा हो जाए। तो बोले तो नहीं होता, सब करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, कहां कहां बन पाते हैं। बोले संकल्प भी करते जाते हैं, विकल्प भी करते जाते हैं, अथवा प्रारब्ध से विकल्प होता जाता है, इसलिए वो संकल्प पूरा नहीं होता। तो कोई ब्राह्मण देवता थे नारायण, चले तो अब रास्ते में थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, उन्हें ये मालूम नहीं था कि कल्प वृक्ष है। तो बोले भाई इस समय कहीं स्नान के लिए पानी मिल जाता तो हमारी थकान दूर हो जाती। वो कल्प वृक्ष था, ऐसा सोचते ही और सामने पानी दिखाई देने लगा। अरे बोले पानी तो है, तालाब तो ये रहा, नहा लिए। अब ब्राह्मण जब तक नहावे नहीं तभी तक ठीक है और नहाने के बाद उसे भोजन चाहिए। तो बोले कहीं से भोजन आ जाता तो अच्छा होता, सो खट से थाली आ गई, स्वादु भोजन किया। अब बोले अब तो विश्राम करें, पलंग बिछ गया। अब पलंग पर लेट गए नारायण, अब सोचने लगे कि ये क्या चक्कर क्या हो रहा है, जो जो मैं सोचता जा रहा हूं सोई सोई पूरा होता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पेड़ पर कोई भूत रहता हो? तो ऊपर को तो भूत था ही उनका, तो देखा तो वहां पर भूत ही खड़ा था। तो बोले अब ये भूत मुझे खा जाएगा, तो वो भूत उतरा और उसको ब्राह्मण देवता को खा गया। ये तो है नारायण कहानी, लेकिन सबके जीवन में यही हो रहा है। आप अपने जीवन की तालिका बना लेना, मैंने तो कई बार बनाई है। हमारे जीवन में छोटी बड़ी जो कुछ भी उपलब्धि है, जिसको हम उपलब्धि बोलते हैं, चाहे घर की हो, परिवार की हो, पैसे की हो, विद्या की हो, ज्ञान की हो, कुछ भी हो, जो कुछ उपलब्धि हुई है उसके पीछे हमारा संकल्प ही रहा है। जा पर जाकर सत्य सनेहू, सो ताहि मिलहि न कछु संदेहू। स्नेह सत्य होना चाहिए, प्रीति जो है उसकी मांग जो है वो सत्य होनी चाहिए। एक होती है इच्छा और एक होती है मांग। पेट भरा हुआ है तो इच्छा है कि मिठाई और मिल जाए, और पेट खाली है, भूख का समय हो गया है, भूख लग भी रही है, तो उस समय आपके भोजन की इच्छा नहीं है, उस समय भोजन की मांग है। भगवान के यहां नियम यह है कि जिस चीज की मांग होती है वो पूरी होती है। हमारे स्वामी भागवतानंद जी महाराज एक वाक्य बोलते हैं ना, इच्छा कभी पूरी हो नहीं सकती, आवश्यकता कभी रुक नहीं सकती। तो बात सच्ची है, इच्छा कभी पूरी हो नहीं सकती और आवश्यकता की पूर्ति हमेशा हो जाती है। तो ये इसका शरीर जो है, जैसा स्थूल शरीर है वैसे इसकी आकृति है। अब कहते हैं कि इसको भी बताओ कि इस जब आकृति वही है तो इसके भी तो सिर हाथ पैर होने चाहिए। तो बोले हां, इसके भी हाथ पैर हैं। तस्य प्राण एव शिरा। अब प्राण में कोश है ना, तो पंच प्राण को ही इसके अंग बताएंगे। अब बताओ कौन कौन से हैं पंच प्राण। तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। अब नाम तो सबको याद है, और योग के ग्रंथों में 10 प्राण माने जाते हैं। तो मन शरीर को जितने हिस्सों में आप विभाजित कर दो तो उस हिस्से की जो क्रिया शक्ति है उसको ही प्राण बोलते हैं। अब जैसे यहां से कंठ से लेकर के और ये सिर तक एक हिस्सा ये हुआ, इसमें जो शक्ति क्रिया शक्ति काम कर रही है इसको बोलते हैं उदान। उत माने ऊपर के हिस्से में, और ये कंठ से लेकर के और नाभि तक इसको बोलते हैं प्राण, और नाभि में प्रदेश में जो रहता है उसको बोलते हैं समान, और नाभि से नीचे जो प्राण शक्ति क्रिया शक्ति है उसको बोलते हैं अपान। और हमारी एक एक नस नाड़ी में जो प्राण चलता है, शक्ति क्रिया शक्ति रहती है, उसको बोलते हैं व्यान। व्यान माने व्यापक। तो भागवत पुराण में ऐसा लिखा है कि मनुष्य के शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। अब संख्या में आजकल के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मैंने एक वैसे पूछा था डॉक्टर से, तो बोले ये तो हम नहीं कह सकते 72 करोड़ हैं कितनी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सूक्ष्म नसें हैं जिनका माइक्रोस्कोप से भी पता नहीं चलता है, वो बनती भी रहती हैं बिगड़ती भी रहती हैं। ये एक एक हर एक मांसपेशी में जो है एक एक नस है, तो 72 करोड़ है। तो 72 करोड़ों नाड़ियों में जो प्राण संचरित करता है, चलता है, जो क्रिया शक्ति चलती है उसको बोलते हैं व्यान। तो ये मुख्य 5 प्राण हैं, और सिर का अलग कर दिया देवदत्त और धनंजय और क्रिकल, और ये सब जो है दूसरे उप प्राण कहलाते हैं। तो जो मुख्य प्राण है उनकी गिनती करते हैं। तस्य प्राण एव शिरः। ये जो प्राण है माने फेफड़े। वैसे यहां प्राण का मतलब फेफड़े और उदान वायु मिला करके है, माने ये पूरा सिर से लेकर के और फेफड़े जहां तक समाप्त होते हैं, यहां तक जो क्रिया शक्ति काम करती है ये सब प्राण है, ये इसका सिर है प्राण में कोश का। तस्य प्राण एव शिरः। व्यानो दक्षिण पक्षः। जो व्यान है माने सर्वव्यापक, जो पूरे शरीर की नस नाड़ियों में व्याप्त है, वो इसका दायां हाथ है, दायां पंख है, और अपान उत्तर पक्ष है और अपान जो नीचे का है वो इसका उत्तर पक्ष है। अब ये मत सोचना इसमें कि इसको दक्षिण क्यों कहा, इसको उत्तर क्यों कहा, वो तो कोई ना कोई तो नाम आप दोगे, ये सब अध्यारोप हैं। तो आप दूसरी तरीके से अध्यारोप करना चाहो तो कर लो। जो अध्यारोप अपवाद के लिए होता है उसमें दुराग्रह नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने एक दिन कहा था कि पांच कोश नहीं है, सात कोश हैं। तो पांच कोश जो मानने वाले हैं वो कहेंगे सात की गिनती क्यों करते हो? अरे भाई सात कर लो तुम, नौ कर लो, चार कर लो, तीन कर लो, जब सब आखिर में समेटना ही है सबको, तो जितने करोगे उतना कोई समेटना पड़ेगा। तो अपान उत्तर पक्ष आकाश आत्मा, इस प्राण में कोश का धड़ क्या है, माने जो बीच का सार भाग है वो क्या है, जो कहते हैं कि आकाश इसका धड़ है, आत्मा है। अब बोले चर्चा तो प्राण की चल रही थी, ये आकाश यहां कहां से आ गया? तो सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने कहा कि भाष्यकार ने तो लिख दिया कि आकाश माने सब प्राणों का जो चलने का स्थान है, जिसमें ये प्राण चलते हैं, सारी वायु चलती है, वही उसी के लिए इसको कहा गया है। सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा आकाश, आकाश का एक पर्यायवाची शब्द क्या है, नभ। नभ माने भी आकाश ही होता है। और बोले कि नभ एवं नाभि ही, ये जो नाभि है, टूंडी जिसको बोलते हैं, यही नाभ, भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, यही तो बोलते हैं ना। तो ये नाभि क्या है ना? तो नभ एवं नाभि, आकाश को ही नभ बोलते हैं, इसी को नाभि बोलते हैं, भगवान का आकाश। तो टूंडी में रहने वाला जो समान वायु है वो इसका आत्मा है, ये सुरेश्वराचार्य जी ने अर्थ किया। आकाश आत्मा और पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, इसकी पूंछ क्या है प्राणमय कोश की? तो बोले पृथ्वी, अब इसमें दोनों गुरु चेला ने एक ही अर्थ किया है, भाष्य में भी वही है और सुरेश्वराचार्य जी बोले पृथ्वी, पृथ्वी का तो प्राण से कोई संबंध ही नहीं है। बोले नहीं, संबंध है। ये जो उदान वायु है ये तो ऊपर को फेंकता है सब चीजों को, और अपान वायु जो है ये नीचे की ओर फेंकता है, और प्राण जो है ये बीच में समन्वय स्थापित करता है, और समान जो है अंदर अंदर समन्वय स्थापित करता है। तो ये आदमी उड़ क्यों नहीं जाता, या जमीन में घुस क्यों नहीं जाता? तो बोले पृथ्वी विश्वस्य धारणी, ये पृथ्वी जो है इसको धारण किए रहती, इतनी आसानी से सांस चलता रहता है कि कोई झटका हमको नहीं लगता है। अच्छा, ये धरती 24 घंटे में पूरा घूम जाती है अपनी केली पे, पृथ्वी जो है दिन रात इसी से होते हैं, 24 घंटे में हम एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं नारायण, तो किसी को झटका भी लगता है कि हम दौड़ रहे हैं। तो इसलिए यहां पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी अधिष्ठात्री देवी, ऐसा भाष्यकार ने अर्थ किया है, माने इनको व्यवस्थित जो रखता है वही इसकी प्रतिष्ठा है। तदप्येषो श्लोको भवति, उसके ही बारे में ये श्लोक है। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति, अब ये जो इंद्रियों के देवता हैं, कल बताया था, परसों बताया था, कि जैसे सूक्ष्म और स्थूल ये कारण शरीर हुए, ऐसे इनमें अधिदेव की भी कल्पना की गई है। एक एक चीज में एक एक चेतना, एक है चैतन्य और एक है चेतना, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश चेतना धृति ही एतत् क्षेत्रम। तो एक है शरीर, एक है शरीर की चेतना और एक है शरीर का अभिमानी। तो चेतना तो है क्रियाशक्ति, और इस क्रियाशक्ति और शरीर का जो अभिमानी है वो क्रिया और ज्ञान का मिला जुला भाव है, विज्ञान आत्मा है। तो ये जो देवता लोग हैं, ये देवता अपने अपने शरीर और अपनी अपनी क्रिया के अभिमानी हैं। जैसे आंख, आंख की क्रिया क्या है? देखने की क्रिया। और इसका अभिमानी कौन है? तो इस शरीर में तो जीव है, मेरी आंख। और सब आंखों का अभिमानी कौन है? तो बोले वो सूर्य देवता है। तो उसी को अधिदेव बोलते हैं। तो ऐसे ये 33 करोड़ देवता आपके शरीर में मौजूद हैं। वो करोड़ तो पुराणों ने कर दिया है, 33 कोटि ये उपनिषद की भाषा है। 33 प्रकार के देवता होते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, वो दिए हुए हैं नारायण। अब समय हो गया है तो चर्चा फिर करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।